बदबख्ती पर बदबख्ती, लानत है ऐसी किस्मत पर।
तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो?
मैं गुस्सा क्यों ना हूं? देखो तो क्या हालत कर दी है तुम्हारी, कुछ पता है? बिल्कुल शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह। कौन था पहचाना नहीं?
बाइक वाला था यार।
कैसा था? कितनी उम्र का था?
जवान था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने सर पर हेलमेट पहना हुआ था। हवा के घोड़े पर सवार आया और मेरा बैग लेकर ये जा वो जा।
बैग में क्या था? कितने पैसे?
इसकी फिक्र नहीं है मुझे। शुक्र है कि जान बच गई। ब्रिज हदफ के कुछ कागजात वगैरह थे जो उसके किसी काम के नहीं।
अरे 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 अरे, कहीं ये उसी बहरोज का काम ना हो, क्योंकि सिर्फ वही है जिसे इससे फायदा पहुंच सकता है। बाकी वो कागजात तो किसी और के काम के हैं भी नहीं। तुम थे कहां पर?
ब्रिज सदफ के बिल्कुल सामने।
या शायद उस बिल्डर का काम हो। क्या नाम था उसका? जावेद। हाँ, ये उसी का काम है। लेकिन सारी गलती तुम्हारी अपनी। तुम भी पागल हो, कोई माकूल शख्स इतने अहम कागजात को इस तरह से यूं बैग में लिए फिरता है या जावेद के ऑफिस में पहुंच जाता है? तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हें पकड़ ना ले और कहीं कागजात ना छीन ले? हाँ, या ये भी बिल्कुल मिसेस हिकमत वाले मामले की तरह हो गया जब तुम्हें पकड़कर मारा?
बस
था।
भी करो यार, तुम भी ना बिल्कुल बड़ी बूढ़ियों की तरह बस मुझे नसीहत करने लगते हो और मेरा दिमाग खराब करते हो। जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता।
जाओ जाकर पुलिस को बताओ और उस जावेद और बहरोज के खिलाफ FIR कटाओ।
दिमाग सही है? मैं जाऊं और जाकर यह कंप्लेन करूं कि उनके कागजात मेरे ब्रीफ केस में थे और वो उन्होंने छीन लिए हैं? लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जाओ, चलो जाओ।
मैं काम पर जा रहा हूं, बहनोज घर से बाहर ना जाए, फिर भी जाना चाहे तो उसके साथ जाओगी तुम, समझे?
ठीक है।
बहनोज अंदर जाओ, जब तक मैं वापस ना हूं तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई ना?
बिल्कुल।
कहाँ जा रही हो?
काम है कुछ।
रुको, मैं भी चलती हूँ।
जरूरत नहीं, मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देना बाबा के इख्तियार में है, लेकिन घर से बाहर जाना तो मेरे खुद के इख्तियार में है।
इतनी जिद मत करो बहनोश, देख तो रही हो वो गुस्से में है, आजकल उनकी हालत ठीक नहीं है।
मैं उनके आने से पहले आ जाऊंगी।
और अगर उन्होंने फोन कर लिया तो?
मुझे क्या पता भाई, कुछ भी कह दीजिएगा।
Thank you. हो क्रांति साहब, कहिए कैसे आना हुआ?
कुछ नहीं, बस मैं ये पूछने आया था कि आपने क्या किया, आप मेरा साथ देंगे या नहीं?
मैं तो संजय के हिसाब चुकता करने आए हैं। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, आप खुद ही बेकाबू हो गए थे।
कोई बात नहीं, जाने दें, मैंने बुरा नहीं माना, बस ये पूछने आया था कि फिर आपने क्या सोचा।
मैंने अब क्या सोचना है, इस काम और इस सोच में तो आपने मुझे डाला था, वरना मैं तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, और अब भी मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है।
क्या मतलब, मैं यहाँ आपसे पैमान को बख्शवाने के लिए आया हूँ और आपने उसे खुदा पर छोड़ दिया है? पैमान साहब वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हैं और अजाब झेल रहे हैं, और यहाँ वो फ्रॉडिया जावेद मजे उड़ा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैंने खुदा पर छोड़ दिया है। वो तो यतीम बच्चों का माल है, ना कि मेरा और आपका, कि जिसे हम खुदा पर छोड़ दें।
मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाएं, ताकि मेरे दिल को भी इत्मीनान हो। मुझे तो कुछ नहीं पता, तो फिर कैसे मैं आपकी बात पर यकीन कर लूं?
सारे सबूत तो वो कमबख्त मेरे से बाइक वाला छीन कर ले गया, ये बात जावेद भी अच्छी तरह जानता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से बोलता और मेरे पास कोई सबूत नहीं होता, तो आपको लगता है कि जावेद आपको ये 2 करोड़ की ऑफर देता? अगर दाल में कुछ काला नहीं होता तो पहले दिन ही आपको अपने ऑफिस से धक्के देकर निकलवा देता।
वैसे बात आपकी कुछ गलत भी नहीं, चलें अंदर चलकर बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए।
अस्सलामु अलैकुम।
सलाम मिस शफी, क्या हाल है आपके?
शुक्रिया मैं ठीक हूँ।
पैमान साहब की हालत में अब कुछ बेहतरी आई है?
कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वैसी ही है। आप इंजीनियर जावेद को जानती हैं?
हाँ जी।
उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर हमारा केस अदालत में गया तो मैं भी सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा और कह दूंगा कि पैमान शरीर जुर्म रहा है, और तब हमारी तमाम दौलत और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। आप अपने साथी से कहिए कि वह हमारे तमाम कागजात वापस लौटा दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएं।
काश आप ये बातें तब करती जब आपके शौहर और जावेद मिलकर इन यतीम बच्चों की तमाम दौलत और जायदाद हड़प कर रहे थे। मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके शौहर के लिए कुछ करूँ, लेकिन हम इंसानों की मुश्किल ये है कि जब हम खुद किसी मुश्किल में फंसते हैं तो बाकी लोगों को भूल जाते हैं। बेहतर है कि जावेद साहब की बातों से घबराने के बजाय अपने उस ख्वाब पर तवज्जो दें जो आपने अपने शौहर के मुतालिक देखा था। ये सोचिए कि आप उनकी निजात का सामान कर रही हैं। आप यकीन रखिए कि अगर आप बेकसूर हैं तो खुदा खुद तमाम काम ठीक कर देगा। मैं चलती हूँ।
हेलो।
सलाम करामती साहब।
शुक्रिया अजमन साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, खैरियत?
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पुरिया साहब ने एक अजीब हरकत की है
जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को न थी।
समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्योंकि उन पैसों का ताल्लुक आपसे था।
खैर तो अजमन साहब मसला क्या है?
मसला ये है कि वो मस्जिद के लिए जो आपने पैसे दिए थे वो मस्जिद के अकाउंट में नहीं डाले गए हैं
और मुस्तहिक अफराद तक भी नहीं पहुंचाए गए हैं।
मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खुद बेहतर जानते होंगे कि वो रकम कहां गई।
ताज्जुब है, बहरहाल अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, मैं खुद से बात कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, बस ये याद रखिए कि ये बात उस पर जाहिर ना हो।
आप इत्मीनान रखिए। ठीक है, तो फिर अब आप इस मामले को खुद जानिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह बात करेंगे कि उन्हें ये एहसास ना हो कि चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है।
जी जरूर, आप मुतमईन रहिए, मेरे लायक कोई खिदमत।
खुदा हाफिज।
पुरिया साहब कहाँ होते हैं आजकल जनाब? जब सब कुछ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चल रहा हो तो फिर ऐसी कोई हरकत करना मुनासिब नहीं।
जी क्या मतलब?
मतलब ये कि वो 10 लाख रुपए जो आपको मुस्तकीन के लिए दिए गए थे ये ले जाकर अजमन को दे दीजिएगा। क्या किया उनका? उनको नहीं पहुंचाए, रमजान का महीना है, उनको जरूरत है।
मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने खर्च कर दिए, एक मुस्तहिक शख्स को दे दिए, इसीलिए नहीं दिए थे तुमने?
क्यों नहीं?
बस तो आपके सामने खड़ा है ये जरूरतमंद, आखिर मैं भी तो जरूरतमंद हूँ, फिर किसी और को तलाश करने की क्या जरूरत है?
आखिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हें बस एक नफसियाती डॉक्टर की जरूरत है।
हाँ मुझे मालूम है, ये तो आप और आपके वो अर्जुमन साहब हैं जो समझ नहीं पा रहे। मैं अगर जरूरतमंद ना होता तो आज माकूल इंसान ना शुमार होता और फिर अपनी मनपसंद लड़की के साथ जिंदगी ना गुजार रहा होता। अगर आपका मुझे काम दिलाने का और इंसान बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि प्रोफेसर आदमी को माफ कर दूं, तो जाओ माफ किया। अब ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने पैसे लेने आए तो मैं साफ साफ बता देता हूँ वो मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ जाके शिकायत कर दो, अंदर करवा दें, अच्छा वो मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको मेरे रूहानी बाप बनने की जरूरत नहीं है।
जी बुलाइए, फरमाइए।
इंजीनियर जावेद
जी, आप कौन?
ये बात छोड़ें, खास बात यह कि मेरे पास ब्रिज सदफ से मुतालिक चंद अहम कागजात हैं, लिहाजा मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ।
आप तीसरे शख्स हैं जो ऐसे अहमकाना दावे करके मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
मैं अब किसी से ब्लैकमेल होने वाला नहीं,
अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है सामने आकर बात करें मुझसे।
उन कागजात की एक कॉपी अभी चंद मिनट में आप तक पहुंच जाएगी। आपका मुझसे इस तरह से बात करना आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। खुदा हाफिज।
क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे हवास कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा क्या?
गुब्बारे ले लो साहब, गुब्बारे गुब्बारे ले लो साहब। सरोज रुको रुको,
मेरी बात सुनो मोहतरमा, मैं आपसे आजाना दरख्वास्त करता हूँ, अपनी माँ का दिल मेरी माँ को दे दें, जितनी भी कीमत चाहे देने को मैं तैयार हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ।
अरे भाई, बंदी ने अर्ज किया ना कि हम अपनी माँ का दिल एक फौजी को हदिया कर चुके हैं, उन्होंने हमारे लिए काफी जहमत की थी, हमारा भी फर्ज बनता है कि।
मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे, आप फिलहाल ये 70 लाख रुपए ले लें, बाकी की 20 लाख मैं वादा करती हूँ कि आखिरी हफ्ते तक अदा कर दूंगी।
देखिए मोहतरमा, हमने कोई दुकान लगाकर नहीं रखी है, एक बार कह दिया ना, हमारी शर्त वही है, जाइए जाइए भी, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लें।
कई एक वजूहात है, इनमें से एक वजह तो ये थी कि हम चाहते थे कि जमाने में इस खुदगर्जी के दौर में
हिकमत साहब
आजा का हथियार देकर अपने इस अमल से मुआशरे में एक मिसाल कायम करें और ये बताएं कि शदीद मसाइल में भी कार्य खैर अंजाम दिया जा सकता है।
माफ कीजिएगा हिकमत साहब, आपके पास आपकी या आपकी माँ की कोई तस्वीर हो तो हमें दीजिएगा, हमें अखबार में छापनी है।
इत्तेफाक से एल्बम मेरी गाड़ी में ही पड़ा है, जाते वक्त मैं आपको तस्वीरें दे दूंगा।
आपका बहुत
बहुत
शुक्रिया,
माफ कीजिएगा, जरा आप जरा इधर आइए, तशरीफ लाइए। आखिर आप लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे या नहीं? लगता है आपको भी करामती साहब की तरह से बात समझ में नहीं आती। जी एक
आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, डॉक्टर साहब ने बोला है कि बाद में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, अतिया आजा के लिए इस फॉर्म को फिल करके साइन कर दें।
मैं खुद जाकर साइन कर देता हूँ, आपको एतराज तो नहीं?
ठीक है
जी, बहुत शुक्रिया।
बेचारी मरियम, मरियम के लिए भी कुछ कीजिए आप।
मर्द की एक जबान होती है, मुझे ये गुर्दा आपके दोस्त को नहीं बेचना।
तुम खुद को बहुत अकलमंद समझते हो? हाँ
आहिस्ता आहिस्ता, ये हॉस्पिटल है।
ये इंसान दोस्ती का दम किस लिए भर रहे हो? हाँ किस लिए, चंद टकों की खातिर? हमें तो जैसे समझ में ही नहीं आ रहा ना कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो।
सही बोल रही हूँ।
ऐसा मत करो कि हम चीख चीख कर तुम्हारी असलियत सबको बता दें कि तुम क्या चाहते हो।
और चीखो, खूब चिल्लाओ, फरियाद करो, मुझे ऊंची आवाज से डरा रही हो? हाँ मुझे डरा रही हो? कोई और हुक्म, कोई फरमाइश? वैसे कुछ बुरा नहीं कि इंसान कभी कभार चिल्लाकर गुबार हल्का कर ले। मुझे ये गुर्दा आपकी दोस्त को तो हरगिज नहीं बेचना, ये बात समझ गए? समझ गए आप? और आप मेरे साथ आइए, मैं आपको तस्वीर दे दूं।
खुदारा आप ही कुछ कीजिए। हिकमत साहिबा,
अरे भाई मेरे पीछे
बस कीजिए।
आखिर मैं क्या करूं?
कुछ नहीं, ठहरे मैं खुद कुछ करती हूँ, आप परेशान मत हो।
लेकिन कैसे?
ये मुझ पर छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा।
माफी चाहता हूँ जनाब, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ठीक तो हैं?
ठीक है,
शुक्र है आप ठीक है और बाल बाल बच गए।
कोई बात नहीं, आप जाइए।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनाब।
नहीं, मेरी अपनी गलती थी।
मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ।
ठीक है।
महमूद, आखिर आप क्यों हाथ धो के बहनोश के पीछे पड़ गए हैं?
तुम दोनों एक दूसरे का इसलिए साथ दे रही हो ताकि मेरा दिमाग खराब करो। मैंने तुमसे कहा था ना, वो जहाँ भी जाए उसके साथ जाना।
अस्सलामुअलैकुम।
मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ।
इनकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद अकेले जाना चाहती थी।
तो गलत क्या था? कुछ पता चलेगा कहाँ गई थी या उसी से मिलने गई थी सरोज से?
नहीं, मैं अकेली थी, बस जरा हॉस्पिटल तक गई थी।
इस वक्त वो बिफरा हुआ है, कामरान कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। अपना न सही, हमारा ही कुछ ख्याल। तुम ही बताओ हम तुम पर कैसे एतमाद करें?
मेरी मौत और जिंदगी मेरे इख्तियार में नहीं है और वक्त भी मेरे पास कम है। मैंने अरवाहों से अहद किया है भाई, कसम खाई है। आप मेरी मुश्किल समझने की कोशिश करें बाबा। अगर आप चंद रोज, सिर्फ चंद रोज और मुझे बर्दाश्त कर लें तो हमेशा के लिए आपको मुझसे निजात मिल जाएगी। माफ कीजिएगा, सारी मेरी गलती थी।
क्या सरोज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
ये क्या सरोज, ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूँ।
अगर तुम ठीक होते तो यूँ चकरा कर हौस में ना गिर पड़ते। कितना कहा है डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप करवाओ।
कैसे डॉक्टर, किस डॉक्टर के पास जाऊँ? कहीं आप भी तो ये नहीं समझ रहे कि आपका बेटा पागल हो गया है।
खुदा ना करे, लो मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, हमें इसकी वजह मालूम होनी चाहिए, डॉक्टर को पता होगा।
अब तो मेरी बात का महवर बस अरवाएं होकर रह गई है, फिर भी पता नहीं क्यों कोई पेशरफ नहीं हो रही है। ऑफिस के मामला मैंने मसूद के सुपुर कर दिए, अगर मैं वहाँ होता भी हूँ तो दूसरों के लिए दर्द सर बना रहता हूँ।
ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ तो बोलो।
आपको अपने स्कूल के काम निपटाने के लिए वक्त कम पड़ता है, आप बस मेरे लिए दुआ करें। दुआ?
मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, लेकिन तुम भी खुदा से मदद मांगो, इंसान की दुआ मांगने की बात ही कुछ और।
ड्राइविंग के दौरान मेरा ध्यान या तो परवाना और नीमा में लगा होता है या फिर वादों की फिक्र में।
तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ।
आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक जा रहा है। मैं भी अदालत का फैसला आते ही आने की तैयारी शुरू कर दूंगी।
तुम्हारा वीजा तैयार है, जैसे ही फैसला हो जाए सिफारत खाने चली जाना, या फिर सलामत को कह देना, वो खुद तमाम काम करवा देगी।
आप इत्मीनान रखिए और मैं एक माह के अंदर अंदर वहां आपके पास आ जाऊंगी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है मेरी जान।
मामा, मैं आपसे प्यार करती हूँ।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा हाफिज।
क्या हुआ, उसकी आवाज बहुत ऊंची थी।
अरे नहीं, मुझे सहारी के लिए क्यों नहीं उठाया?
क्योंकि रोजा ऐसे मरीज के लिए जो मुस्तकिल दवाइयां लेता हो ना सिर्फ वाजिब नहीं। पहले तुम्हें उठाने के लिए हर जतन कर लेती थी, तुम तो वैसे भी कुछ नहीं खाते हो।
पहले की बात कुछ और थी मामा, अब बहुत कुछ बदल गया है।
किसी तरह उठ जाओ, और कोमा में जाने के बाद तुम बहुत कमजोर हो गए हो, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। जाओ जाके सो जाओ, मैं खुद तुम्हें नमाज के लिए उठा दूंगी।
मैं सहन में जा रहा हूं, नमाज के वक्त बुला लीजिएगा।
जरा ख्याल से बेटा, कहीं चकरा के ना गिर जाना।
ठीक है, डरिए मत, कुछ नहीं होगा मुझे।
हो जा। अबे यार हो भी जा।
उस्ताद,
खुदा की मार है लानती गधे, ये पहले दरवाजा खटखटाते हैं उसके बाद अंदर आते हैं।
उस्ताद मसूद है, सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है, अंदर आने का पूछ रहा है।
तो अब हिलते मीनार की तरह यहां पर खड़ा क्या हिल रहा है, जा आप जाकर बुलाओ उसे।
उस्ताद जब भी आपको गुस्सा आता है ना खुदा कसम बड़ा मजा आता है, कसम है आपको मेरी, एक दफा और मेरी कसम।
दफा हो जा, जा जा जाकर उसे नीचे भेज।
अच्छा उस्ताद जा रहा हूं।
ओ मसूद साहब नीचे तशरीफ ले आइए, हमा यार अब आ भी जाइए।
मैं आज यहाँ तुमसे एक बहुत अहम मामले पर बात करने के लिए आया हूँ। मुझे डर है कि सरोज ब्रिज सदफ वाले मामले को भांप जाएगा, बिलखसूस अगर मैं बीच में पड़ा तो।
भांप जाए तो भांप जाए, भांप लेने से कोई चीज साबित नहीं की जा सकती। उसके पास कोई सबूत नहीं कि उनका अगजात की चोरी तुमने ही करवाई थी।
हाँ सबूत तो कोई नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर है कि जावेद कहीं मुझसे मिलकर या मेरी आवाज रिकॉर्ड करके मेरे और सरोज के मापन तालुका को भांप ना जाए, हमारे सारे मंसूबे पर पानी फिर जाएगा।
तो फिर क्या करना चाहिए?
जावेद के साथ जाकर तुम मुजाकरात करो, कोर्ट कचहरी और कंपनी के मुंतकली के कागजात वगैरह मैं देख लेता हूँ।
ठीक है, तमाम कागजात भी तैयार। अच्छा सुनो, अगर हम कामबीज को भेज दें कि वो जाकर जावेद से मिल
ले तो? तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिला? माना कामबीज एक होशियार लड़का है लेकिन किसी से डील करने की अहलियत नहीं है उसमें।
ठीक है, तुम कागजात मुझे दे, कल मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। उन कागजात में ऐसी हेर फेर करूंगा कि अदालत में किसी को शुबा तक ना होगा। बस जैसे ही काम खत्म हो जाए तो हमें जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर से बैठना होगा। खुश है?
ठीक है,
कोई मसला?
हाँ।
करामति साहब के काम का ताल्लुक प्रोडक्शन से तो नहीं है ना? गालिबन उनका तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम है ना?
क्यों खैरियत?
वैसे ही, दरअसल वो एक खुश्क दूध की कोई फैक्ट्री खरीदना चाह रहे थे।
मुझे कुछ खबर नहीं है जनाब।
गालिबन जब से वो कौमा हादसा उन्हें पेश आया उसके बाद से वो काफी बदल गए हैं, दुरुस्त है?
जी नहीं, यानी जी हाँ, अलबत्ता वो पहले भी काफी अच्छे इंसान थे।
जी जी, आपके यहाँ नमाज खाना है?
जी हाँ, यानी जी नहीं, वो दरअसल जिसे नमाज पढ़नी होती है तो वो अपने ही रूम में एक तरफ जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ लेता है।
बेटी मैं किसी पूछगछ के लिए नहीं आया हूँ जो आप इस तरह से जवाब दे रही हैं। मैं तो बस ये चाह रहा था कि करामती साहब के आने तक जरूरत को गनीमत जानू और नमाज से फारिग हो जाऊँ, बस।
जी बिल्कुल, आप वहाँ वजू कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेटा किस कमरे में जाऊं?
चाबी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
कैसे हैं जनाब?
मैं ठीक हूं, मैं नमाज पढ़ लूं?
जी आप उस कमरे में चले जाएं।
ये सामने वाले कमरे में?
जी। एक्सक्यूज मी सर।
अभी जाइए मिस, अभी जाइए।
जी
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये शफी साहब का घर है?
जी फरमाइए।
माफ कीजिएगा, मुझे मिस बहनोश शफी से काम था, क्या वो घर पर हैं?
जी आप कौन?
मैं करामती हूँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था।
जी जरूर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज।
بہنوش جان، آپ کا فون ہے.
جی فرمائیے.
السلام علیکم.
کیا ہوا؟
دیکھیے مس بہنوش، میں آپ کے اس منگیتر، سابقہ منگیتر کی بچکانوں احمقانہ حرکتوں سے اب تنگ آ چکا ہوں.
کیوں، کیا ہو گیا؟
کیا ہو گیا؟ اس نے ابھی ابھی مجھے اپنی گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش کی ہے، اور اب میں اس کے خلاف پولیس میں شکایت کروں گا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. وہ کیا سمجھتا ہے، یہ کوئی فلم ہے جو اتنی آسانی سے کسی کو مارا جا سکتا ہے؟
آپ خیریت سے تو ہیں نا جناب؟
میں ٹھیک ہوں، بس آپ کو تمام معاملات سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ بعد میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے.
مجھے واقعی بہت افسوس ہے، میں معافی چاہتی ہوں. میں بابا سے کہوں گی کہ وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں، آپ پریشان مت ہوئیے. میں بس آپ کو ایک خبر بتانا چاہ رہی تھی کہ آج مسز حکمت کو آزا کی پیوند کاری کے لیے لے جائیں گے. اگر ہو سکے تو ایک چکر ہاسپٹل کا بھی لگا لیجیے گا.
واقعی؟
جی.
اور مریم کے بھائی والے مسئلے کا کیا ہوا؟
دیکھیں، میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کیا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کہ کیا ہوا. میرے گھر میں ذرا مسئلہ چل رہا ہے.
چلیں ٹھیک ہے، میں خود چلا جاتا ہوں. معافی چاہتا ہوں، خدا حافظ.
معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تمام باتوں کے لیے، خصوصاً کامران کے لیے.
کوئی بات نہیں، خدا حافظ.
کیا ہوا بہنوش، کامران نے کیا کر دیا؟
یہ لڑکا بالکل پاگل ہو گیا ہے. آج اسے سروش کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش کی ہے.
اوہ میرے خدا، خدا ان کی حفاظت کرے. تمہیں اپنے بابا کو ضرور بتانا چاہیے.
میں ہاسپٹل جا رہی ہوں.
آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا حاجی صاحب؟
وہ دراصل جب ہم صندوق خیریہ کے پیسوں کے حساب کتاب کی ذمہ داری کسی کو سونپتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے اچھی طرح تحقیق کروا لیتے ہیں. لہذا پوریا کے بارے میں بھی ہم نے اپنے ایک آدمی کو یونیورسٹی بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے دوستوں سے معلومات حاصل کر لے.
تعجب ہے، اتفاق سے میں نے عالمی صاحب کی مجلس ترحیم کے موقع پر محسوس کیا تھا کہ پوریا اور عالمی صاحب کی بیٹی کے درمیان کچھ ہے، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اتنی اہم بات ہوگی.
عالمی صاحب سے پوریا کی نفرت کی اصل وجہ بھی یہی تھی، اور وہ حق بجانب بھی ہے. خود میں بھی اگر کوئی شخص اتنی منافقت کرے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں زمین آسمان کا فرق ہو تو مجھے بھی اس سے نفرت ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ان عالمی جیسے ریاکار لوگوں سے زیادہ کسی اور نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہوگا. دیکھ لیجئے کہ آج کی نوجوان نسل دین سے کتنی بدزن ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی منافق اور ریاکار انسان ہیں.
جی جی جی، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، لیکن عالمی صاحب تو اس قسم کے آدمی نہیں تھے. ارجمن صاحب،
بہتر ہے کہ ہم خود کوئی رائے قائم نہ کریں، اب جبکہ ماہ رمضان ہے اور ویسے بھی غیبت ہمارے اعمال صالح کو باطل کر دیتی ہے.
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے تحقیق کروائی ہے، تو بس یعنی آپ کی باتوں میں صداقت ہے یا نہیں حاجی صاحب؟
جو کچھ میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی ایک بہت خوش گفتار عالم اور مومن شخص تھے. پوریا بھی اسی وجہ سے انہیں آئیڈیالائز کرنے لگا تھا، پھر وہ ان کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے جاتا ہے. عالمی صاحب اس کی گھریلو حالات اور غربت کی وجہ سے اسے رد کر دیتے ہیں اور اس کے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں. پوریا بھی بالآخر جذبات میں آ کر ان کی کلاس میں جا کر ان کے خلاف کافی شور شرابہ کرتا ہے، جس پر عالمی صاحب اسے یونیورسٹی سے نکلوا دیتے ہیں.
افسوس ہوا، افسوس ہوا. یہ بتائیے کہ عالمی صاحب کی بیٹی پوریا میں انٹرسٹڈ تھی یا نہیں، یا یہ سب یک طرفہ؟
اب یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بظاہر عالمی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو جلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں اور خلوت میں کچھ اور. اسی منافقانہ رویے کی وجہ سے پوریا ان کی مخالفت پر اتر آیا تھا.
تعجب ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ارجمن صاحب؟
یہ اب آپ خود سوچئے، میں صرف یہ باتیں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا بس.
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब,
माफ कीजिएगा, क्या आखिरी बार हम अपनी वालदा से मिल सकते हैं?
ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मिल लीजिए।
वो बहुत तकलीफ में है ना?
उन्हें कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं है। आपकी वालदा को काफी अरसे से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको अंदाजा है आप इस समय से कितने लोगों की जान बचाएंगे?
ये तो हमारे इंसानी फरीजा था डॉक्टर।
आप अपनी माँ से जाके मिल सकते हैं, मैं उनसे कह देता हूँ। सिस्टर माधवी, हिकमत साहब और उनकी मिसेज अपनी वालदा से मिल सकते हैं।
अस्सलामुअलैकुम।
जी फरमाइए।
माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब ने हमें इजाजत दी है कि हम अपने मरीज मिसेज हिकमत से मिल सकते हैं।
ठीक है, आप वहाँ इंतजार करें, मैं भी आपको बताती हूँ।
बहुत शुक्रिया।
मैं जश्न मनाऊंगी तुम्हारी मौत पर। मैं चाहती हूं कि मैं उस घर में एक दावत का इत्माम करूं और उरूसी जोड़ा पहनूं। तुम्हें याद है कि तुमने हमारी शादी पे कितनी कंजूसी से काम लिया था? इतनी कंजूसी की थी कि हमने दावत पे किसी को नहीं बुलाया। तुम्हारी मौत पर मैं शादी का जश्न मनाऊंगी और चरागाह करूंगी।
मैं आपके स्याह दिल को 1 करोड़ से भी ज्यादा में बेचूंगा। मैं भीख मंगों की तरह पला हूं, जानती हो क्यों? क्योंकि आपका बाप भी एक भिखारी था। उसने अपनी तमाम दौलत इसी तरीके से जमा की थी, इसी तरह आपने भी सूद पर पैसे दे देकर दौलतमंद बन गई।
मुझे अंदाजा है कि आप लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, लेकिन प्लीज आप बाहर आ जाइए।
जी अच्छा।
मुझे बहुत खुशी हुई कि बिलाखिर वो लोग मान गए।
मैं भी खुश हूँ। दुआ करें गुर्दा मैच हो जाए।
वैसे ये लोग राजी कैसे हो गए?
कुछ नहीं, पैसे दिए हैं, 20 लाख तो मान ज्यादा दिए हैं।
कहाँ से आए, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे।
बस हो गया, नहीं थे मेरे पास, अगर सूट पर लिए हैं 20 लाख ज्यादा में। मुझे ऑपरेशन थिएटर जाना है।
मरियम,
बस खुदा जानता है कि कितना सख्त अजाब इनका मुंतजर है, खुदा जानता है।
दीजिए। हाँ